اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
ہم جانتے ہیں کہ ہم رحم کے عہد میں ہیں اور اس وقت ہم سب فضل کے دور میں زندہ ہیں۔ میں اور آپ فضل کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن فضل عذر نہیں کہ ہم کچھ غلط کریں اور سوچیں کہ ہم سے باز پرس نہیں ہوگی۔ خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں اس کے پاک روح کی قوت ہے جو ہمیں قابل کرتی ہے کہ جو درست ہے وہ کریں۔ تمہیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ تم مانگتے نہیں ہو۔ اگر ہم اپنے پورے دل سے خدا کی تلاش کریں تو ہم اسے پائیں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ اس دعا کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اکثر اس دعا کو دہراتے رہیں، تمام دن، بلکہ شاید 10 مرتبہ۔ خداوند میری مدد کر تاکہ جو درست ہے وہ کروں۔ کیا ہم یہ جملہ اپنی دعا میں شامل کر سکتے ہیں؟ خداوند میری مدد کر تاکہ وہ کروں جو درست ہے۔ آئیں سب مشق کریں، درست کام کرنے میں میری مدد کر۔ پہلا پترس 2:15۔ کیا جانتے ہیں کہ آپ میں سے ہر کوئی بہت زیادہ ذہین ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں کہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ ہلکی سی ضمیر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دیکھیں، پاک روح سے معمور ہونے کا ایک اور فائدہ ہے کہ وہ قائلیت دینے والا ہے، وہ قائل کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آج جس تعلق کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہ دو فریقین کے درمیان تبادلہ ہے۔ آپ پاک روح سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں۔ صرف عذر نہ بنائیں اور نہ یہ کہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے، بلکہ کہیں کہ میں وہ سب کرنا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میں تیرے ساتھ قریبی تعلق چاہتی ہوں، میری مدد کر، میں تیرے بغیر یہ نہیں کر سکتی۔ معاف کرنے میں اور درست کام کرنے میں میری مدد کر۔ لوگوں پر مہربان ہونے میں مدد کر۔ میری مدد کر کے لوگوں کو اپنی زندگی سے خارج نہ کروں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا جس سے مجھے دکھ ملا۔ میری مدد کر۔ خدا نے جو مجھ سے کرنے کے لیے کہا وہ میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں یہ چاہتی تھی۔ میں نے پورے 10 سے 15 سال یہ کیا اس لیے نہیں کہ کیا میں یہ چاہتی تھی، میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ کرنا درست تھا کہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کروں جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، جنہوں نے میرا کبھی خیال نہ کیا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا کیا، خدا کے نزدیک آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ میرے باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی بہت 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 سالوں تک، یعنی بار 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 بار۔ یہ بہت ہی گھناؤنی کہانی ہے۔ میری ماں نے میری کوئی مدد نہ کی کیونکہ وہ میرے باپ سے خوفزدہ تھی۔ لیکن دیکھیں خدا نے کیا کچھ کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان کی صحت خراب ہونے لگی تو ظاہر ہے ان کو میری مدد کی ضرورت تھی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میرے پاس کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کی مدد کروں اور نہ ہی ایسی خواہش تھی کہ ان پر پیسہ لگاؤں۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ کرنا درست ہے۔ میں یہ جانتی تھی، بلکہ اس وقت بھی میری ایک بیوہ خالہ تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے خالو نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ہمیشہ ان کی دیکھ بھال کروں گی، اور اس سب کو گزرے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں اب بھی نرسنگ ہوم جاتی ہوں، ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ۔ میری دونوں بیٹیاں بھی باقاعدگی سے جاتی ہیں۔ اور کیا جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی خاص قریبی تعلق بھی نہیں ہے، لیکن یہ درست عمل ہے۔ وہ میری رشتہ دار ہیں، ان کا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ درست ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ سو सुनिए, अगर आप अपनी जिंदगी में पाक रू की मामूरी और पाक रू का मसा चाहते हैं, तो फिर आप वो करना शुरू करें जो कि दुरुस्त है, क्योंकि ये दुरुस्त है। और भूल जाएं कि आपके क्या एहसासात हैं या आपको इसकी क्या कीमत देना पड़ेगी। खुदावंद, अगर तू कहता है कि ये दुरुस्त है, तो फिर मैं वो करूंगी जो कि दुरुस्त है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि खुदा का मसा आपकी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको ज्यादा इत्मीनान हासिल होगा। मेरा ख्याल है कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी, आप ज्यादा मजबूत होंगे। मेरा ख्याल है शायद हमें अंदाजा नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें किस कदर अहम हैं, जिनको हम नजरअंदाज करते हैं, जो हमारे जमीर को झंझोड़ती हैं। इसलिए हमें उजर बनाना तर्क करना होगा कि मैं ये तो नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। जी हाँ, आप खुदा की मदद से सब कुछ कर सकते हैं। मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे ताकत बख्शता है। याद रखें, राहत से पहले तकलीफ है। पहला पत्रस 2:15। पत्रस के खत में ये 3 आयात हैं जो कि बताती हैं कि दुरुस्त काम करें, क्योंकि खुदा की यह मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो, जो अपनी नादानी में तुम पर इल्जाम लगाते हैं। पहला पत्रस 3:17। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ, तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। देखिए, मैं यहां खड़ी ये वादा नहीं कर सकती कि अगर आप कुछ दुरुस्त करेंगे तो आपको हमेशा और फौरी अजर मिलेगा, बल्कि ऐसा वक्त भी आता है कि आप दुरुस्त काम करते हैं और फिर आपको ऐसा करने से बहुत नुकसान भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूं, शायद आपको अपनी जिंदगी में किसी के साथ लंबे अरसे तक अच्छा बर्ताव करना है, इससे पहले कि वो आपसे अच्छा सुलूक करें। और यह भी मुमकिन है कि शायद वो कभी भी आपसे अच्छा सुलूक ना करें, लेकिन आप जानते हैं कि आप खुदा के हैं और आप उसके लिए जिंदा हैं, और वो करते हैं जो दुरुस्त है, क्योंकि ये दुरुस्त है। मैं बताना चाहूंगी कि खुदा की तरफ से आपका अजर बहुत ज्यादा होगा, जो शायद ही आप किसी शख्स से हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिल में उतर रही हैं। शायद असली एतबार से इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ताल्लुक की बात कर रही हूं, मैं खुदा के लिए जीने की बात कर रही हूं। कितने लोगों ने ब्रदर लॉरेंस के बारे में सुना है, जिसने खुदा की हुजूरी की मशक के ताल्लुक से लिखा है। ठीक है, अगर आपने कभी उसकी किताब नहीं पढ़ी, ये बहुत ही छोटी सी किताब है और मेरे पास 1910 की अशाती कॉपी है। इसे खरीदें और पढ़ें। ये किताब एक राहब के बारे में है जो खुदा की हुजूरी की मशक करता था। वो कहता है, मैं खुशी से जमीन पर गिरे हुए कागज को उठाता हूँ, मैं खुदा की मोहब्बत में ये करता हूँ। आज सुबह जब हम होटल के कमरे से निकले, तो मैंने सोचा कि डेव भी आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए, और मैं सोच रही थी कि आप अंदर क्या कर रहे हैं, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। जब बाहर आए तो मैंने पूछा कि आप अंदर क्या कर रहे थे। वो बोले कि मैं वो तमाम बत्तियां बुझा रहा था जो तुम जलती हुई छोड़ आई हो। देखें, ये ऐसी चीज है कि हम महसूस करते हैं कि ये करना दुरुस्त है। मैं क्यों बंद करूं, मैंने तो कमरे का किराया अदा किया है। लेकिन यीशु ने कहा कि जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मैं आपको बता दूं कि पाक रू आपकी जिंदगी बदल देगा। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचकर कहा कि मैं अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देता हूं, आ और मुझे ले और पाक रू से भर दे। मैं ये बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इससे बचना अब मुश्किल है। मामला कुछ फर्क तरह से होंगे, लेकिन क्या आप पुरजोश नहीं है कि ऐसा करना फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अब आपके अंदर एक शख्सियत रहती है, क्योंकि आप जो भी करेंगे वो इस ताल्लुक से आपके साथ बातचीत करेगा। ज्यादातर यही कहेगा, बहुत अच्छा है, तुम पर फखर है। अगर ऐसा नहीं है, कहें खुदा मदद कर, दुरुस्त काम करने में मेरी मदद कर। पहला पत्रस 4:19। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी हाँ जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें जिसने उन्हें बनाया और उनको कभी मायूस नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आप अपनी कंपनी में तरक्की चाहते हैं और आपकी कंपनी एक शख्स जिसे आप पसंद नहीं करते उसे तरक्की दे देती है, लेकिन आपको वहां काम करते हुए ज्यादा अरसा हो चुका है और आप उनसे ज्यादा मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उसको तरक्की मिल जाती है, आप गुस्से में आ जाते हैं, आपको मालिक पर गुस्सा है, कंपनी पर गुस्सा है, आपको सब पर गुस्सा है। ऐ खुदा मेरी मदद कर कि जब मैं कल काम पर जाऊं तो वो करूं जो दुरुस्त है। मेरी मदद कर कि कड़वाहट ना रखूं, मेरी मदद कर कि नाराजगी ना रखूं और तुझ पर भरोसा रखूं और यकीन करूं कि अगर तेरी मर्जी यही है तो मेरे लिए ये कर सकता था और अगर तू ये नहीं करता तो फिर मेरे लिए कुछ बेहतर रखा है। और फिर काम पर जाते हैं और आपका जिस्म चीख रहा है, लेकिन आप उस शख्स के पास जाते हैं जिसे तरक्की मिली है जो आप चाहते थे और आप उसे तरक्की पर मुबारकबाद देते हैं कि मुझे आपके लिए खुशी है, और आप चले जाते हैं, खुदावंद मेरी मदद करके अपना मुंह बंद रखूं। यसु ने शागिर्दों से यूहन्ना 13 बाप में पांव धोने के ताल्लुक से कहा, इससे मुराद दूसरों का खादिम होना है। छोटी छोटी बातों में वो कहता है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्त ये कि उन पर अमल भी करो। चर्च जाने के साथ एक जिम्मेदारी भी है, मुझे नहीं मालूम कि आप जानते हैं या नहीं, शायद मैंने इस हफ्ते आपको बहुत ज्यादा मालूमात दे दी है और अब घर जाकर आपने पहली जैसी जिंदगी नहीं गुजारनी जैसा कि गुजारते आए हैं। पहला पत्रस 4 बाप की 1 और 2 आयत, पस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज अख्तियार करके हथियार बंद बनो और दुख उठाकर खुदा की मर्जी पूरी करो, ना कि नाकाम हो। मैं से बयान करूंगी, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, ये तबाहकुन दुखों की बात नहीं कर रहा, यानी वो बातें जो आपकी जिंदगी में होती रहती हैं, जैसा कि बीमारी। जिस्म के एतबार से दुख उठाने का मतलब है कि आपका जिस्म इन चीजों को करने के लिए मजाहमत करेगा जो आप जानते हैं कि करना दुरुस्त है, और आपका जिस्म ऐसा करने से दुख उठाता है। आप में से कितने महसूस करते हैं जब आपका जिस्म दुख उठाता है? ठीक है, अगर आप 5 किलो वजन कम करें तो देखें आपका जिस्म दुख उठाता है या नहीं। यह आपको बताएगा कि आपको भूख लगी है, आप मर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो। जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया और मसीह जैसा मिजाज रखे तो उसने गुनाह से फरागत पाई और खुद को और दुनिया को खुश करना तर्क कर दिया, बल्कि खुदा को खुश किया। आज मैं जो आपसे कह रही हूं इसका हासिल कलाम यह है कि बतौर मसीह के बदन के ये पैगाम दें कि वक्त आ पहुंचा है कि खुद को और दूसरों को खुश करना तर्क कर दें और एक वाज़े इरादा करें और कहें कि मैं खुदा की मर्जी पूरी करने का चुनाव करती हूं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। पाक रूह मुझे दिन के हर लम्हे में भरता रहे, मेरी मदद कर, मदद कर, मदद कर, मेरी मदद कर। सिर्फ अपनी मर्जी की चीजें हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए मदद कर, खुदा की मर्जी के लिए मेरी मदद कर कि दुरुस्त काम करूं। दूसरी आयत, ताकि आइंदा को अपनी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। देखें, जिस्म के एतबार से दुख उठाने की वजह से लोग कलाम पर अमल नहीं करते, क्योंकि कलाम पर अमल करने से हमें खींचा जाता है। शायद दर्द कम करने के लिए आप नाफरमानी कर सकते हैं, लेकिन ये दुख बर्दाश्त करने के नतीजे में बरकत भी ला सकती हैं। मैं जानती हूं कि मुझे खुद को किसी सूरत हाल में हलीम करना चाहिए, लेकिन जब तक मैं ये ना करूं मुझे तकलीफ महसूस ना होगी। देखे, मुझे मनादी करता सुनकर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, आप मुत्तफिक हो रहे हैं और कभी कभी तालियां भी बजाते हैं। आपको घर भी जाना है। कल रात जब हम पार्किंग की जगह पर जा रहे थे और बहुत सी दूसरी कारें भी थी, हमारे ड्राइवर का इरादा तो नहीं था, लेकिन उसने एक खातून के आगे से गाड़ी गुजार दी। उसने ट्रैफिक की लाइन को तोड़ा था और ये खातून जो कार में थी उसने कुछ ऐसा रद्दे अमल किया और जेब ने हाथ से इशारा किया। लेकिन देखें, अगर वो जानती कि मैं गाड़ी में मौजूद हूं तो शायद ऐसा ना करती, लेकिन हमें सबके साथ यकसा सुलूक करना है। क्योंकि इस तरह से हम लोगों की तरफदारी करने वाले होंगे और यही असू ने करने से मना किया है। मुझे तो बहुत लुत्फ आ रहा है, इसलिए आप कभी भी हकीकतन इस पैगाम की अहमियत को समझ नहीं सकेंगे जब तक कि आप खड़े ना हो और कोई आपके पांव पर पांव ना रख दे। जब आप कार पार्किंग में जाएं और आपके साथ भी ऐसा ही हो, अब सुने कि जब आप इंतजार में हैं, जब आप 5 मिनट तक इंतजार कर रहे हो कि पार्किंग की जगह मिल जाए, कोई शख्स अपनी गाड़ी निकाले जो कि काफी देर से गाड़ी में मुसलसल बैठा है और गाड़ी की बत्तियां भी जल रही हैं और आप सोचते हैं क्या तुमने मुझे नहीं देखा, कि क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रही, यहां से गाड़ी निकालो और मुझे जगह दो। और फिर क्या होता है, जैसे ही वो निकलता है तो अचानक ही कोई और आकर वो जगह ले लेता है। और फिर जिस्म सर उठाता है। अब आप सब गौर से सुनिए, मैं आपको इसके मुतालिक बताऊंगी कि आप उस वक्त रूहानी पुख्तगी की मेराज पर पहुंचते हैं जबकि आपके अंदर गुस्सा उबर रहा है और आप उनको कहें खुदावन आपको बरकत दे। सुने, मैं आपको बता रही हूं कि आप तैयार रहें क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मजीद काम नहीं आएंगी। ठीक है, आपके लिए ये एक अच्छा बयान है। ख्वाहिश और रद्दे अमल के दरमियान फासला तायुन करता है कि कोई शख्स कितनी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है ताकि खुदा की मर्जी को पूरा करे। दोबारा कहूंगी, ख्वाहिश और अमल के दरमियान फासला तायुन करता है कि कोई शख्स खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए किस कदर दुख बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए आज आप सब जो यहां बैठे हैं, मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि यहां मौजूद हर शख्स या कोई भी जो टीवी देख रहा है कि वो ये सब ना करना चाहे जो मैं कह रही हूं। आप में से कितने हैं जो वाकई ये सब चाहते हैं जो इस वक्त मैं कह रही हूं, लेकिन फिर भी आपको घर जाना है। इसी वक्त मुझे ये याद आ रहा है एक शख्स के बारे में जिसमें से बदरूहें निकाली गई थी। शायद ये अंधा या माजूर था, मुझे याद नहीं, लेकिन उसके साथ बड़ा मसला था। यीशु ने शिफा दी। उसने यीशु से कहा, कि जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। यसु ने कहा, तुम घर जाओ और खानदान वालों को बताओ कि खुदा ने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। इसलिए बात ये नहीं कि आप मेरी सफरी टीम में शामिल हो जाएं, बल्कि आप सबके लिए काम है कि आप अपनी जिंदगी में वापस लौटें, काम पर जाएं, स्कूल जाएं, घर जाएं, अपने पड़ोस में जाएं और उनको दिखाएं। जरूरी नहीं है कि मनादी करें, बल्कि दिखाएं कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या क्या तब्दीली पैदा की है। आमीन। ओ यीशु, लूका 5 की पहली आयत से, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदावन का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाऊं की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। और जब कलाम कर चुका तो शमाऊं से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। मैं जल्दी से बताऊंगी कि आप ये समझ लें कि ये लोग सारी रात शिकार करते रहे और कुछ ना मिला। वो कश्तियां वापस लाकर अब अपने जाल धो रहे थे। और फिर यसु उनको एक शानदार ख्याल देता है कि वो दोबारा शिकार पर चलें। पतरस ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से मैं जाल दोबारा डालता हूं। मैंने लूका 5 बाब पर सीरीज में मुख्तलिफ पैगामात सुनाए हैं। अब बाइबल में ये मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा हवाला है। मुझे यहां कुछ नजर आ रहा है जो बहुत अहम है। अब ये सब बातें मैं आपको वजाहत से बताती हूं। पतरस बुनियादी तौर पर कह रहा है कि मुझे ये ना तो महसूस हो रहा है और ना ही ये कोई अच्छा ख्याल है। मैंने पहले ही बहुत कोशिश की लेकिन कोई शिकार ना मिला। हम थके हुए हैं और अब सोना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तू कहता है तो मैं करता हूं, मैं करूंगा। सुने, जब खुदा के साथ ऐसे ताल्लुक की बात हो तो सच यह है कि हम चुनाव का हक भी नहीं रखते। अब गौर करें कि क्या होता है। 6 आयत में यह बहुत शानदार है, ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी थी। और उन्होंने अपने शरीकों को, जो दूसरी कश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। अब इसमें पैगाम यह है कि अगर हम वो करें जो दुरुस्त है और वो करें जो खुदा कहता है, पाक रूह की मदद और रहनुमाई से, तो चाहे हम जो भी सोचें या महसूस करें या जो हम चाहते हैं, तो खुदा हमारी कश्तियों को इस कदर भर देगा और जाल भी भर देगा, और ये सब कुछ इस कदर भर जाएंगे कि हमें इर्द गिर्द दूसरों को भी इसमें शामिल करने के लिए बुलाना पड़ेगा। आइए, वक्त है कि हम सब नई राह पर चलें। शुक्रिया यीशु। आए हम कसरत के लिए पाक रूह पर इंतजार करें, जरूरत पूरी होने से ज्यादा के लिए। देखें, हमें पाक रूह की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हमें उसकी कुव्वत की जरूरत है ताकि हम ताबे रहें। आए दुआ करें और उसकी मदद मांगें ताकि वो करें जो खुदा चाहता है कि हम करें, खास तौर पर उन मुश्किल हालात में जो दरपेश हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पाक रूह के बारे में वो सब सीखें जो आप सीख सकते हैं। ये अहम है कि हम उसकी हुजूरी को जानें और उसके साथ दुरुस्त ताल्लुक कायम करें।